بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506542। श्रोताओ, आज सोमवार है, दय मास की 26, जमादिसानी की 23 और जनवरी की 16 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे विश्व दर्पण, और सभा के अंत में भी एक और साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा, सेहत का राज। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि 27 प्रांतों का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। यूरोपीय देशों ने इसराइल को चेतावनी दी है कि एकपक्षीय भड़काऊ गतिविधियों के खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारियों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि मीडिया को जानकारी साझा न करें। पाकिस्तान में विख्यात वकील और अफगानिस्तान में पूर्व सांसद की हत्या की घटनाएं हुई हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। देश के 27 प्रांतों में तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है। ईरान के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख तुर्कियान का कहना है कि कुछ प्रांतों में तापमान -29 तक गिर गया है और ये ठंडक पिछले 14 साल में अभूतपूर्व है। तुर्कियान ने बताया कि दूर दराज के इलाकों में गैस सप्लाई नेटवर्क पर भारी बोझ है और गैस का प्रेशर कम हो जाने की वजह से कुछ लोगों को समस्याओं का सामना था, जिसे देखते हुए गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और निर्णय किया गया कि 24 घंटे के भीतर नागरिकों के घर गर्म रखने की समस्या दूर की जानी चाहिए। इसी बीच ईरान की पार्स गैस व तेल कंपनी के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कतर के साथ संयुक्त जल सीमा पर स्थित बेलाल गैस फील्ड से गैस निकालने का काम शुरू हो गया, जो महत्वपूर्ण प्रगति है। मोहम्मद हुसैन मुतजल्ली ने बताया कि जुलाई 2022 से इस गैस फील्ड को डेवलप करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके नतीजे में इस समय बड़ी सफलता मिली है।
यूरोपीय देशों ने पिछले सप्ताह काबिज इसराइली सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि फिलिस्तीन मसले में इसराइल की तरफ से एकपक्षीय रूप से की जाने वाली भड़काऊ कार्रवाइयों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि कई यूरोपीय देशों ने इसराइली विदेश मंत्री एली कोहिन से बात की है और चेतावनी दी है कि एकपक्षीय रूप से की जाने वाली कार्रवाइयां गुड्स और वेस्ट बैंक में हालात खराब करने के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। यूरोपीय विदेश मंत्रियों ने कहा है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में बनने वाली वर्तमान सरकार मस्जिद अल अक्सा की स्थिति में बदलाव की कोशिश कर सकती है और फिलिस्तीनी इलाकों में ज़ायनी बस्तियों के निर्माण का दायरा बढ़ा सकती है, और ये दोनों ही काम ऐसे हैं जिनसे हालात बिगड़ेंगे। मीडिया का कहना है कि ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, एस्टोनिया, क्रोएशिया, साइप्रस और ग्वेंटेमाला के विदेश मंत्रियों ने कोहिन से टेलीफोन पर बात की और उन्हें विदेश मंत्री पद की बधाई दी, मगर कुछ विदेश मंत्रियों ने इसी बातचीत में ये भी कहा कि नेतन्याहू सरकार एकपक्षीय रूप से अगर कदम उठाती है तो हालात खराब होंगे। यूरोपीय विदेश मंत्रियों का कहना है कि हम इसराइल के होमलैंड सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गफीर की गतिविधियों पर गहरी नजर रखे हैं और उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से पूरा इलाका आग की शोले की तरह भड़क उठेगा। यूरोपीय संघ के विदेश नीति अधिकारी जोसेफ बोरेल ने गत गुरुवार को फोन करके इसराइली विदेश मंत्री से कहा कि हालिया समय में इसराइली सरकार ने अनेक फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी, जिससे हमें गहरी चिंता है। उन्होंने कहा कि यूरोप इस समय यूक्रेन युद्ध से पैदा होने वाली परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और इन हालात में इसराइल को चाहिए कि हालात को कंट्रोल करने में हमारी मदद करे, खास तौर पर इसलिए भी कि ईरान और रूस का सहयोग विस्तृत होता जा रहा है।
एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने लिखा है कि सऊदी अरब के न्यायालय ने देश के प्रसिद्ध विचारक अव्वाद अल करनी को उनके ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम अकाउंट्स हैक करके मुस्लिम ब्रदरहुड्स का समर्थन करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। गार्जियन अंग्रेजी अखबार गार्जियन अखबार ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब की अदालत ने प्रसिद्ध सऊदी विचारक और प्रचारक अव्वाद अल करनी को 5 साल से ज्यादा हिरासत के बाद मौत की सजा सुना दी। इस अखबार ने इस बात पर बल दिया कि अव्वाद अल करनी के बेटे नासिर अल करनी ने, जो आले सऊद सरकार के विरोधी के रूप में देश छोड़कर लंदन में रह रहे हैं, अखबार को ऐसे दस्तावेज दिए हैं जिनसे जाहिर होता है कि सऊदी अधिकारियों ने उनके पिता को सजाए मौत सुना दी है।
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दर्जन भर सरकारी संस्थान और वैज्ञानिक संगठनों को उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर में भू धंसाव के संबंध में मीडिया से बातचीत या सोशल मीडिया पर डेटा साझा न करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई स्थिति की व्याख्या न सिर्फ प्रभावित निवासियों बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा 13 जनवरी को जारी एक प्रारंभिक रिपोर्ट, जो जोशीमठ के कुछ हिस्सों में तेजी से धसाव की घटना दिखाती है, को NRSC की वेबसाइट से हटा दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से 7 महीनों की अवधि में जोशीमठ शहर के भीतर 8.9 सेंटीमीटर तक धीमा धसाव दर्ज किया गया था। इसरो के कंट्रोसेट 2S उपग्रह के डेटा ने 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच सिर्फ 12 दिनों में करीब 5.4 सेंटीमीटर तीव्र धसाव दर्ज किया था।
पाकिस्तान के विख्यात वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख लतीफ आफरीदी की पेशावर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि हमलावर ने उन्हें पेशावर हाई कोर्ट बार की इमारत पर निशाना बनाया। हमलावर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद लतीफ आफरीदी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 2020 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने एडवोकेट अब्दुल लतीफ आफरीदी को अपना अध्यक्ष चुना था। वो आसिमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार थे, लेकिन कद्दावर हस्ती होने के नाते उन्हें अपोजिशन संगठन का भी समर्थन हासिल था। लतीफ आफरीदी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 70 के दशक के बाद देश में जितने भी मार्शल लॉ लगे और फिर विपक्षी दलों के जितने भी आंदोलन चले, उन सब में वे हर बार जेल गए।
अफगानिस्तान की पुलिस का कहना है कि पूर्व सांसद मुरसल नबीजादा और उनके बॉडीगार्ड की राजधानी काबुल के घर के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार को होने वाले हमले में अफगान महिला सांसद के भाई और उनका दूसरा सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए हैं। 32 साल की मुरसल नबीजादा उन महिला सांसदों में से थी जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता आ जाने के बाद भी काबुल में ही रह रही थी। مرسل نبی زادہ کے قریبی ساتھی ان کی سیواؤں کو سراہتے ہوئے انہیں افغانستان کے لیے لڑنے والی نیڈر چیمپئن کہتے ہیں، جنہوں نے دیش چھوڑنے کا افسر ٹھکرا دیا اور کابل میں رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیا۔ کابل پولیس کے پروکتا خالد زدران نے مہیلا سانسد کی ہتیا کی جانچ کے بارے میں بتایا کہ سرکشا بلوں نے گھٹنا کی گمبھیرتا سے جانچ شروع کر دی ہے۔ پورو مہیلا سانسد مریم سلیمان نے کہا کہ نبی زادہ خطروں کا بے خوفی اور مضبوطی سے سامنا کرنے والی مہیلا تھی، جو آشنکاؤں کے باوجود ہمیشہ سچ کے لیے اپنے سٹینڈ پر ڈٹی رہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ نبی زادہ نے افغانستان چھوڑنے کا موقع ملنے کے باوجود اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ادھیکاروں کے لیے لڑنے کو ترجیح دی۔ نبی زادہ 2018 میں کابل سے سانسد چنی گئیں اور طالبان کا شاسن آنے تک اسی پد پر رہیں۔
نیپال کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اب ویمان درگھٹنا کا شکار ہونے والوں میں کسی کے جیوت بچے ہونے کی آشا نہیں رہی ہے۔ اس بیچ جانچ کرتاؤں نے ویمان کے دونوں بلیک باکس پراپت کر لیے ہیں۔ تاکسی علاقے کے ایک ادھیکاری کے حوالے سے جہاں ویمان درگھٹنا کا شکار ہوا، میڈیا نے بتایا کہ 68 شو کھوجے جا چکے ہیں جبکہ 4 شووں کی تلاش جاری ہے۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ چمتکار ہو جائے اور یہ 4 لوگ جیوت بچ جائیں، مگر ہمیں اب اس بات کی آشا نہیں رہی کہ وہ جیوت ہوں گے۔ ویمان پر 72 لوگ سوار تھے۔ کل 68 شو مل گئے تھے جبکہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے شیش 4 لوگوں کی کھوج صبح تک روک دی گئی تھی۔ کاٹمنڈو ایئرپورٹ پرشاسن کے ادھیکاریوں کے حوالے سے رائٹرز نے رپورٹ دی کہ وشیشجوں کو ویمان کے دونوں بلیک باکس مل گئے ہیں اور دونوں ہی صحیح حالت میں ملے ہیں۔ ATR-72 پرکار کا ویمان یٹی ایئر لائن سے سمبندھت تھا، جو کاٹمنڈو سے پوکھرا نگر کے بیچ پریوگ ہو رہا تھا۔ پوکھرا سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹ کے بھیتر ویمان درگھٹنا کا شکار ہو گیا۔ ویمان پر 57 نیپالی، 5 بھارتی، 4 روسی اور 2 دکشن کوریائی، جبکہ آئرلینڈ، آسٹریلیا، فرانس اور ارجنٹینا کے ایک ایک ناگرک سوار تھے۔
یوکرین یدھ کے گمبھیر ہوتے حالات کے بیچ یوکرین کی سینا کو جرمنی میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے پرمکھ مارک میلی نے کہا کہ رویوار سے جرمنی میں یوکرین کی سینا کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے۔ اس بیچ ماسکو میں کریملین ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پشچمی دیشوں یہ یوکرین کو دیے جانے والے ٹینکوں سے حالات میں کوئی بدلاؤ ہونے والا نہیں ہے، ہم ان ٹینکوں کو دھوست کر دیں گے اور پشچم کے اس قدم سے کیول یوکرین سنکٹ کی سمیاودھی لمبی ہوگی۔ بریٹن کے رکشا منترالے نے کہا ہے کہ سولیدار میں یوکرین کی سینا اپنے مورچوں پر موجود ہے اور روس کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بریٹن ان دیشوں میں ہے جو یوکرین کی سینک مدد کر رہے ہیں۔ جہاں جرمنی میں یوکرین کی سینا کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، وہیں روس اور بیلاروس کی وایو سیناؤں نے سنیکت ابھیاس شروع کر دیا ہے۔ یہ ابھیاس 1 فروری تک جاری رہے گی۔ وہیں آئی اے ای اے کے ندیشک رافائل گروسن نے کہا ہے کہ یوکرین میں ہم اپنی گتیویدھیوں کا دائرہ بڑھا رہے ہیں تاکہ پرمانو سنکٹ نہ پیدا ہو۔ اس بیچ نیٹو کے پرمکھ انس اسٹولٹ برگ نے کہا کہ اس بات کے سنکیت نہیں ہیں کہ روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین شانتی کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یوکرین کو جھکانے کا ان کا ارادہ بدلا نہیں ہے۔ روس کا بار بار کہنا ہے کہ پشچمی دیشوں کے ہستکشیپ کی وجہ سے ہی یوکرین یدھ شروع ہوا ہے اور اسی ہستکشیپ کی وجہ سے یہ سنکٹ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔
برٹین کے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیش کے اسپتالوں میں بھیڑ ہے اور مریضوں کو سواستھیہ سویدھائیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے برٹین میں راشٹریہ سواستھیہ سیوا کے اسپتالوں کی استھتی کو خراب چکتسا سیواؤں والے کسی بھی دیش سے بھی بدتر بتایا۔ انگریز ڈاکٹر پال رینسم نے برٹین کے اسپتالوں کو چیتاونی دی ہے کہ یدھگرست یوکرین میں لوگوں کو بہتر سواستھیہ سویدھائیں مل رہی ہیں۔ اخبار کو لکھے پتر میں انہوں نے کہا کہ برٹین کے سواستھیہ کرمچاری بھی اپنی بدھی ختم کر چکے ہیں۔ برٹین میں مانویہ پریاسوں سے راشٹریہ سواستھیہ سیواؤں کو پھر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। यमन में जारी युद्ध के कारण हजारों रोगियों के लिए मौत का खतरा, नहीं रुक रहे हैं नेतन्याहू के विरुद्ध प्रदर्शन और पाकिस्तान के बदलते हालात, तो इन विषयों को हम आज के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट बताती है कि यमन की आबादी के 3/4 लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। यूनिसेफ ने घोषणा की है कि 5 वर्ष से कम आयु के 5,40,000 यमनी बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। पेश है इस बारे में एक समीक्षा जिसे लेकर उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
यमन की राष्ट्रीय सालवेशन सरकार के उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि गुर्दे की खराबी वाले 5,000 रोगियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन लोगों की जिंदगी के जिम्मेदार हैं। यमन की राष्ट्रीय सालवेशन सरकार के उप स्वास्थ्य मंत्री अली जहाफ ने चेतावनी दी है कि यमन एक वास्तविक आपदा की कगार पर है, जिससे गुर्दे की खराबी वाले 5,000 रोगियों के जीवन को खतरा है। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबही ने गुर्दे की खराबी के रोगियों के जीवन को बचाने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया और लाखों यमनियों के लिए दवाएं और खाद्य पदार्थों के आने के 2 मुख्य रास्तों के रूप में सना हवाई अड्डे और अल हुदैदा बंदरगाह को फिर से खोलने की मांग की है। इससे पहले यमन की राष्ट्रीय मुक्ति सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के खिलाफ हमलावर सऊदी गठबंधन की निरंतर नाकेबंदी के कारण विशेष प्रकार की दवाओं की कमी का जिक्र करते हुए कहा था कि एनीमिया से 40,000 थैलेसीमिया रोगियों के जीवन को खतरा है। इस बीच ठंड के मौसम की शुरुआत से ईंधन की समस्या भी बढ़ गई है और इसके अलावा समाचार स्रोतों ने विस्थापितों के शिविरों में बच्चों के कड़ाके की ठंड से ठिठुरने की सूचना दी है, जबकि कुछ अस्पतालों का काम भी ठप पड़ गया है और ईंधन और बिजली की कमी ने जहां रोगियों की समस्याएं बढ़ा दी हैं, वहीं बच्चों की मौत की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 12.9 मिलियन यमनी बच्चों सहित 23.4 मिलियन से अधिक लोगों को, यानी यमन की आबादी के लगभग 3/4 लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है और लगभग 2.2 मिलियन बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इस संबंध में यूनिसेफ ने घोषणा की है कि 5 वर्ष से कम आयु के 5,40,000 यमनी बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं और 9.2 मिलियन बच्चों सहित 17.8 मिलियन से अधिक यमनी नागरिक स्वच्छ पानी और चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं। 29 दिसंबर को यूनिसेफ ने यह भी घोषणा की थी कि यमन उन 8 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है जो खाद्य सुरक्षा की कमी से पीड़ित हैं और पिछले 2 साल के दौरान देश में कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या 3.6% से बढ़कर 66% हो गई है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2015 से यमन में युद्ध का शिकार बच्चों की संख्या 11,000 तक पहुंच गई है और 3,700 से अधिक बच्चों की जान जा चुकी है, जिसका अर्थ है कि 4 बच्चे आए दिन युद्ध का शिकार होते रहे हैं।
नेतन्याहू की कैबिनेट ने ज़ायोनी न्याय व्यवस्था में सुधार के नाम पर एक नई योजना पेश की है। इसका मूल उद्देश्य न्यायपालिका के अधिकारों को पहले से अधिक सीमित करना है। इस योजना के लागू होने से ज़ायोनी शासन की न्यायिक व्यवस्था चरमरा सकती है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं मीसम अब्बास।
इसराइल में एक बड़ी संख्या में लोगों ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। ये प्रदर्शन अवैध कब्जे वाले इलाकों और शहरों जैसे कि तेल अवीव और हैफा में आयोजित हुए। प्रदर्शनकारियों ने जहां नई दक्षिणपंथी ज़ायोनी सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया, वहीं इस सरकार पर न्यायिक व्यवस्था को सीमित करने का आरोप लगाया। नेतन्याहू की कैबिनेट में न्यायपालिका मंत्री यारियू लोविन ने जायोनी न्याय व्यवस्था में सुधारों के नाम पर एक नई योजना पेश की है, जिसका मूल उद्देश्य न्यायपालिका के अधिकारों को पहले से भी अधिक सीमित करना है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इसराइल के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित हो जाएंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी ओर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बहुत हद तक सीमित हो जाएगा, क्योंकि नेसेट को ये अधिकार होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए कानून को वो सिर्फ 61 वोटों से बहाल कर दे। इस तरह से इस प्रस्ताव के पारित होने से अलग अलग पालिकाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे और न्यायपालिका के मुकाबले में संसद और सरकार का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इससे जायोनी शासन की कमजोर न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसका एक मकसद उन मंत्रियों को भी कानून की पहुंच से बचाना है जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। खुद नेतन्याहू और उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि इस प्रस्ताव का मकसद नेतन्याहू और उनके मंत्रियों को बचाना है, जबकि इसके पारित होने से न्यायपालिका की स्वाधीनता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर किसी भी तरह से भ्रष्टाचार और अपराधों को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसराइल में नेतन्याहू सरकार के आलोचकों और विरोधियों का मानना है कि इस प्रस्ताव के पारित होने से इसराइल में रहा सहा लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और जायोनी शासन तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा। इस संदर्भ में फ्रांस प्रेस न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में ऐसे प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर सरकार शर्म करो, हम तानाशाह का पतन चाहते हैं, नेतन्याहू लोकतंत्र का दुश्मन है और हमें फांसीवादी नेता की जरूरत नहीं है, जैसे नारे लिखे हुए थे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब हम रुख करते हैं पाकिस्तान का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर दिन राजनीतिक स्थिति परिवर्तित होती जा रही है। इस्लामाबाद से पेश है पाकिस्तान के बदलते हालात के बारे में नादिर बलोच की वार्ता।
सबके इल्म है कि इमरान खान साहब के दो असेंबलियों को डिसॉल्व करने के ऐलान के बाद यहाँ का मंजरनामा जो है वो बड़ा गर्म है, क्योंकि यहाँ का मौसम तो वैसे सर्द है लेकिन सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसके भी डिसॉल्व कर, यानी कि मंगल को जो है उसकी असेंबली भी आसान हो जाएगी। और यूं इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में दो बड़े सूबे जो पाकिस्तान के तकरीबन 60% आबादी का हिस्सा बन वो जो है बगैर हुकूमतों के और वहां पर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। और अब तो निगरान जो सेटअप है उसके लिए बातचीत चल रही है, निगरान सेटअप पर बात हो रही है, उस पर नामों पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब की जानब से दोनों जानब से जो है वो नाम मांगे गए हैं और इमरान खान के जो जहन में है वो तीन नाम है उस पर भी बातचीत हो रही है और कल तक तीन नाम भी फाइनल हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ी मुतमाइन और बड़े आराम से, जो सबसे बड़ा सियासी दर्द पहुंचा है वो मुस्लिम लीग नवाज है, जिसको अब ये एक सोच खाई जा रही है कि अगर दो असेंबली में इलेक्शन हो जाते हैं और यहाँ पर हुकूमतें बन जाती हैं तो उसके बाद जब कौमी असेंबली का इलेक्शन इन दो हुकूमतों के नीचे होगा तो फिर क्या हालात होंगे। जाहिर है कि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमतें होंगी और वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले बड़े बड़े ऐलान कर देंगे मुख्तलिफ इलाकों में, हल्कों में। ऐसी सूरत हाल में नून लीग के लिए एक बड़ा سیٹ بیک ہے اور وہ ایک بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیوں نہ قومی اسمبلی کی طرف جایا جائے, اس کے اوپر ایک مشاورہ کی رائے موجود ہے. حتمی فیصلہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ رائے موجود ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں عمران خان جو اس وقت اپنی مقبولیت اس عہد پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر دو تائی اکثریت یہ بڑی مارجن تک جیت جاتے ہیں, تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن پر جو ہے وہ نون لیگ کو بڑا نقصان ہوگا اور اس کا خمیازہ انتخابات میں برداشت کرنا.
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شروع آپ سن رہے تھے کاریکرم راجنیتک چرچا, اور اب پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم وشو درپن. विश्व दर्पण. श्रोताओं, विश्व दर्पण में आपका स्वागत है. मैं हूं अहमद अब्बास. कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईरान में कुछ समय पहले होने वाले दंगों में दुश्मन की साजिश की खुली शिकस्त. श्रोताओं, आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले ईरान में कई जगहों पर हंगामों اور دنگوں کی گھٹنائیں ہوئیں, اور ان گھٹناؤں کے دوران دیکھنے میں آیا کہ پشچمی دیش, وشیش روپ سے امریکہ, برٹین اور فرانس, اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے کچھ عرب پٹھو چپکے چپکے سازشوں میں ویست تھے. امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن تو اپنی بدحواسی کی وجہ سے ویسے بھی بدنام ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ بیان دے ڈالا کہ وہ ایران کو آزاد کروائیں گے. حالانکہ بعد میں وائٹ ہاؤس کو بھاری شرمندگی کے بعد اس بیان کی صفائی دینی پڑی. فرانس کے ادھیکاری بھی ہنگاموں کے دوران بڑی بیان بازی کر رہے تھے. راشٹرپتی میکراں سے لے کر دوسرے ادھیکاریوں تک سب بہت سکریہ نظر آنے لگے تھے. حد تو یہ ہے کہ یہ پشچمی ادھیکاری ان آتنکی تتوں کے سمرتھن میں نظر آئے جنہوں نے ایران کے 17,000 بے گناہوں کو قتل کیا ہے, اور جنہیں خود امریکہ سہت پشچمی دیشوں نے لمبے سمے تک آتنکی سنگٹھنوں کی سوچی میں رکھا. یہ سارا ڈرامہ ہوتا رہا اور سب کچھ حجاب کے نام پر کیا گیا. ایران کے دشمنوں نے حجاب کو مدعا بنایا اور یونیورسٹیوں میں ہنگامے کروائے. یہ سب کچھ ہوا مگر نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ, فرانس, برٹین اور ان کے ویسٹ ایشیا کے علاقوں کے پٹھوں کی سازش بری طرح ناکام ہوئی. ناکامی کی کچھ بڑی بنیادی وجہیں رہیں. حال ہی میں ایران کی اسلامی کرانتی کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے پیغمبر اسلام کی سپتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شبھ جنم دیوس کے افسر پر اپنی ایک تقریر میں دشمن کی سازشوں کے بارے میں وستار سے بات کی. ایران کے حالیہ اشانتی کے سلسلے میں دشمن کی سازش بالکل مکمل سازش تھی.
در این قضایای اخیر نقشه دشمن نقشه جامعی بود.
یہ ایران کی اسلامی کرانتی کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا کہنا تھا. اسلامی انقلاب کے نیتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ دشمن نے ہر پہلو سے ایک مضبوط سازش رچی تھی. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دشمن کی اس بھرپور سازش کو دیکھ کر میں نے اپنے دل میں دشمن کی منصوبہ بندی کی تعریف کی. منصوبہ بندی اچھی تھی.
تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم.
اس کے بعد اسلامی انقلاب کے نیتا بڑی اہم بات بیان کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سازش اچھی تھی, بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر تیار کی گئی تھی, مگر پھر بھی ناکام ہو گئی. تو اس ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کہتے ہیں کہ دشمن کی سازش کی ناکامی کی وجہ یہ رہی کہ اس کے اندازے اور انمان غلط تھے.
چرا موفق نشد؟ چون یک پایه دیگر یعنی محاسبش غلط.
اسلامی انقلاب کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کہتے ہیں کہ دشمن سے اندازے کی غلطی ہوئی. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ موجودہ آرتھک مشکلوں کی وجہ سے ایرانی عوام دشمن کی تختہ پلٹ اور بٹوارے کی سازش کے ساتھ ہو جائیں گے. ظاہر ہے یہ غلط اندازہ تھا, غلط انمان تھا.
خیال میکرد ملت ایران بخاطر مشکلات اقتصادی کے وجود دارے با نقشه براندازی و تجزیه طلبی دشمن همراهی خواهد کرد. یه محاسبه است دیگه، محاسبه غلط.
ویش درپان अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
अमेरिका के नेतृत्व में सक्रिय ताकतों से ये गलती हो गई कि उन्होंने ये समझ लिया कि ईरान की जनता उनकी साजिश में साथ देगी, मगर ये नहीं हुआ। होना भी नहीं था क्योंकि इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ प्रोपेगंडा तो बहुत कुछ किया गया, मगर हकीकत बिल्कुल अलग है। हालिया हंगामों में ईरान की महिलाओं के हिजाब को मुद्दा बनाया गया, मगर ईरानी महिला स्कॉलर यजदान मनीष, जिन्होंने उर्दू भाषा की शिक्षा ली है, महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से बात करती हैं। वो ये भी बताती हैं कि इस्लामी इनकलाब आने के बाद से महिलाओं की स्थिति में किस तरह से सुधार हुआ है।
ये जो फर्क है इनकलाब से पहले और इनकलाब के बाद, ये खुल कर सामने आता है। ये इतना बड़ा फर्क है कि अगर किसी ने वो इनकलाब से पहले का दौर देखा हो, उसके बाद को भी देखा हो, ये फर्क उसको महसूस होता है। ये देखिए, इंकलाब के बाद अचानक ऐसा हुआ कि अगर इंकलाब से पहले लोग अपनी बेटियों को माशरे में भेजने के लिए वो परेशान होते थे, अब इंकलाब के बाद वो घबराहट खत्म हो गई। हम देखते हैं कि लड़कियां ज्यादा तालीम याफ्ता हो गई, यूनिवर्सिटी में उनका आना शुरू हो गया, और पढ़ाई के बाद वो जॉब भी करती है माशरे में, बिल्कुल इन्हें माशरे की सरगर्मियाँ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। ये फिर इसकी वजह इसके बगैर नहीं हो सकती कि एक सिक्योरिटी बन गई थी, एक सुकून था, कोई परेशानी नहीं थी। अब हमारी लड़की वो माशरे में जाए, उनको कोई मसला हो या कोई उलझाव हो। और अब मुख्तलिफ फील्ड में भी देखें, लड़कियां खवातीन सब भी मसरूफ अमल हैं, उनको जॉब मिल जाती है उनकी सलाहियत के मुताबिक। और वैसे ही रात को, आधी रात को भी एक औरत बाहर भी निकल सकती है, कोई नहीं है उनको रुकने वाला कि आप क्यों इस वक्त बाहर जा सकती हैं, आप क्यों अकेले जा सकती हैं। ये कोई ना पाबंदी है, ये बिल्कुल ही एक आज़ादी एक औरत को, और उसको एक अमन का माहौल मिल गया है। और इसके अलावा क्या चाहिए, जब एक अमन हो, एक औरत को सिक्योरिटी महसूस हो जाए, उसके घर वालों को ये आसानियां महसूस हो जाए, तो जाहिर है और क्या चाहिए एक औरत के लिए।
यजदान मनीष दूसरी भी अनेक महत्वपूर्ण बातें बताती हैं।
मैं एक आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊं। चलो, अगर कोई भी शायद ये कहें कि ये ईरानी है, आपने मुल्क के हामी बन के ये वैसे ही, तो अपने मुल्क की तारीफें कर रही है। मेरी रिसर्च थी जो सफरनामे ईरान के बारे में उर्दू जुबान में लिखे हुए हैं, और आप यकीन करें कि अक्सर हिस्सा जो, यानी एक सफरनामे का ज्यादा हिस्सा बन गया था ईरानी खातून के हवाले से, और काफी भी पाकिस्तानी लोग थे जो बाहर रहते थे, कोई इंग्लैंड में रहते थे काफी सालों से, वो खुद है ईरान से। एक ने कहा था कि मेरा ये ख्याल था अगर मैं अब ईरान जाऊं, कोई किसी औरत को मैं बाहर नहीं देखूंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और मुझे ये पता चला कि ये यूरोप का या दूसरे ममालिक का एक प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ, ईरानी औरतें तो सारे फील्ड में, सारे वो शोबेजात में तो है, मसरूफ है, और इस तरह वो काम करती हैं कि वो कोई मर्द के बिल्कुल शाना बशाना।
लंबे समय से ईरान में रहने वाली भारतीय मूल की ईरानी नागरिक जहरा जैदी, जो तेहरान हिंदी रेडियो की डायरेक्टर भी रहीं, वो भी ईरान में महिलाओं की स्थिति के बारे में अपना अध्ययन और अनुभव कुछ इस तरह बयान करती हैं।
जिस खानदान में भी खातून की को मरकजियत, यानी खुदा ने तो मरकजियत दी है उसको कि वो घर को संभाले और घर का वो मरकज व महवर होती है, तो जिस खानदान में भी औरत को उस तरह से इज्जत दी जाती है, औरत तालीम याफ्ता होती है, औरत में कुव्वत इरादी होती है, जो कि इस इनकलाब के बाद बहुत हुई। और उस जमाने में भी मैं एक चीज बता दी चलूँ कि इनकबल इनकलाब भी जितना मैंने इसको स्टडी किया है तो मुझे अंदाजा ये होता है कि उस जमाने में जो औरतें पढ़ भी गई थीं, जो खानदान तालीम के यानी हर एक वहां तालीम याफ्ता भी था, अगर वो मगरबी ममालिक से मगरबी तालीम से जो कि था मुतासिर था, उसमें जंग के वक्त, मैंने जंग का पूरा माहौल यहाँ पे देखा है, जंग के वक्त वो लोग ज्यादातर यहाँ से चले गए थे, बाहरी मुल्कों में चले गए थे, बहुत कम थे जो यहाँ थे और बहुत परेशान रहते थे कि क्या होगा और बम गिरेगा। लेकिन वो खवातीन जो बाईमान थी और जो उलमा से मुतासिर थी, वो खवातीन वो थी कि जिन्होंने महाजों के पीछे के सारे काम अंजाम दिए, यानी जख्मियों की मरहम पट्टी और वो सब तो अपनी जगह था, उनके लिए लिबास सिलना, उनके लिए खाने तैयार करना, उनके लिए चंदे जमा करना, यानी सैकड़ों किस्म के काम थे उससे मुताल्लिक, वो सारे वो अंजाम देती थी। तो उस वक्त तो ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता थी या बहुत ज्यादा, मतलब वो उस क्लास की थी जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हो, तो यानी मजबूती जो थी खानदानों की वो मौजूद थी। किसकी वजह से? एक मुस्तकिल मिजाज, एक मजबूत औरत की वजह से। आज उसमें इजाफा हो गया है तालीम का भी, आज उसमें इजाफा हो गया है मजीद इस्लामी तालीमात का भी, तो इसने औरत को और ज्यादा मजबूत और कवि बना दिया है ईरान ने।
ज़हरा ज़ैदी का ये कहना है कि इस्लामी इनकलाब आने के बाद महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है और ईरानी महिलाओं ने बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। ये महिलाएं हिजाब के साथ हर क्षेत्र में सक्रिय हैं।
फैशनेबल जो है वो अब फैशन को उस नजर से नहीं देखती, अक्सरियत की मैं बात कर रही हूँ, अक्सरियत बहुत बड़ी अक्सरियत की, कि जो अब फैशन को उस नजर से नहीं देखता कि यूरोप हमारा आइडियल है तो हमें बस ये करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी हैं जो खवातीन, उनकी तादाद बहुत कम है। तो ये मजबूती किरदार की इल्म के साथ, ईमान के साथ जो आई है, उसने खानदानों को मजबूत किया है। और इसी वजह से जो हमला असल हो रहा है वो औरत के मौजू को लेके हो रहा है कि औरत को किसी सूरत से खानदान में वो मकाम ना मिल सके जो उसे ईरान में हासिल है, और वो चाहते हैं कि औरत वैसी हो जैसी यूरोप में, यानी कम से कम कपड़ों में हो और ज्यादा से ज्यादा उस पर आसानी के साथ तशद्दुद किया जा सके। यूरोप में अगर आप उठा के आदाद शुमार देखें तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, तमाम जगहों के ऊपर औरत पर इतना ज्यादा तशद्दुद हो रहा है कि जिसका कोई जवाब।
ईरान के बारे में अमेरिका के साथ बार बार अंदाजे की गलती होने की ये घटनाएं नजर आती हैं। यही वजह है कि उसे बार बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता इस बारे में कहते हैं कि दुश्मन समझ रहे थे कि अमेरिका के किसी पिट्ठू के पेट्रो डॉलर से इस्लामिक रिपब्लिक के इरादे को तोड़ा जा सकता है। ये उनकी भूल थी। इस्लामी जमहूरिया का इरादा दुश्मन की ताकत के सभी तत्वों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। अब देखना यह है कि ईरान के बारे में बार बार शिकस्त का सामना करने वाले पश्चिमी देश और उनके दुमछल्ले कब तक ईरान के खिलाफ इसी तरह की साजिशें और प्रोपेगंडा करते रहेंगे जो वो पिछले 43 साल से करते आ रहे हैं। ईरानी जनता और ईरान की इस्लामी व्यवस्था की जहां तक बात है तो वो अपने प्रगति के रास्ते पर यथावत आगे बढ़ रही है और बीच बीच में आने वाली इन अड़चनों को भी दूर करती जा रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है सभा का अंतिम कार्यक्रम सेहत का राज।
सेहत का राज।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत का राज की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज में हम आपको विभिन्न फलों के बारे में बताते आ रहे हैं। आज भी हम उसी क्रम को जारी रखते हुए गर्मी के मौसम में पैदा होने वाले उस फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अधिकांश लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विशेष बात यह है कि ये फल पेड़ पर नहीं पैदा होता, बल्कि ये बेल में पाया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा तात्पर्य जिस फल से है उसका नाम है खरबूजा।
खरबूजे का वैज्ञानिक नाम क्यूकमिस मेलो है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये गर्मी के मौसम का फल है जो हमें ताजगी देता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खरबूजे के भीतर विटामिन ए, बी और सी के अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर और फॉलिक एसिड आदि मौजूद होते हैं। पकने के बाद खरबूजे का रंग हल्का पीला सा हो जाता है। वैसे खरबूजे के कई रंग हो सकते हैं। ये बेल के रूप में पैदा होता है, हालांकि इसे ग्रीन हाउस में भी उगाया जाता है।
खरबूजे का गूदा रसीला और पानी से भरा हुआ होता है। खरबूजे की कई जातियां होती हैं जिसके कारण उसके रंग में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि खरबूजे का मूल स्थल पूर्वी ईरान, तुर्किस्तान, भारत और चीन रहे हैं। विश्वविख्यात पर्यटक मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में ईरान के खरबूजों का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि ईरान में पाए जाने वाले खरबूजे शहद की तरह मीठे होते हैं। उनका लिखना है कि ईरान के कई क्षेत्रों में ये मीठे खरबूजे पाए जाते हैं। वर्तमान समय में ईरान के इस्फहान, गिलान, खुरासान और लंगरूत प्रांतों में खरबूजे की अधिक खेती होती है।
ईरान में पैदा किए जाने वाले खरबूजों को रूस, इराक, कुवैत, जर्मनी, ओमान और अफगानिस्तान आदि के लिए निर्यात किया जाता है। ईरान में सबसे अधिक खरबूजे का उत्पादन खुरासान प्रांत में होता है। इस हिसाब से ईरान के भीतर खरबूजे के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र खुरासान प्रांत है। यहाँ पर देश में खरबूजे की पैदावार देश की कुल पैदावार का 52% है। खुरासान के खरबूजे बहुत मीठे तथा स्वादिष्ट होते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण खरबूजों की ईरान के बाहर भी बहुत मांग है। खुरासान के खरबूजे ईरान में मशहदी खरबूजों के नाम से मशहूर हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात फाओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खरबूजे की सबसे अधिक पैदावार चीन में होती है। चीन में हर साल लगभग 16 मिलियन टन खरबूजे पैदा किए जाते हैं। संसार में सबसे अधिक खरबूजे की पैदावार को लेकर तुर्की दूसरे स्थान पर आता है। इस क्षेत्र में ईरान को विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। चीन, तुर्की और ईरान के बाद भी विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर खरबूजे की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जैसे भारत, मिस्र, अमरीका, स्पेन, इटली, ग्वाटेमाला और कजाकिस्तान आदि। हालांकि अधिक खरबूजा निर्यात करने वाले देशों में मैक्सिको, स्पेन, ब्राजील, हॉलैंड और अमेरिका आते हैं।
रासायनिक संरचना के हिसाब से खरबूजे के भीतर 95% पानी होता है। इसके अतिरिक्त इसमें मिठास, नाइट्रोजन, वसा, खनिज, सेलुलोज तथा ए, बी, ई के और سی وٹامن پائے جاتے ہیں۔ خربوزے میں لوح اور جستہ بھی ہوتا ہے۔ خربوزے کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں 30-40% وسایوکت پدارت پائے جاتے ہیں۔ خربوزے کے بیج سے نکالے گئے تیل کو بھی کئی پرکار سے پریوگ کیا جاتا ہے، جس کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ اس تیل کا پریوگ صابن بنانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ خربوزے کے بیجوں کی گیری کا جب تیل نکال لیا جاتا ہے تو اس کا کھوجڑ جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے۔
خربوزے کے بھیتر کیونکہ پوشن تتو اور کئی طرح کے وٹامنز پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ پھل شریر کی پرتیرکشا پرنالی کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں شریر کے بھیتر ہونے والی پانی کی کمی کو خربوزہ پورا کر دیتا ہے۔ اس میں بھرپور ماترا میں وٹامن سی ہوتا ہے، اسی لیے اینٹی آکسیڈنٹ جیسے کارکوں سے یہ لڑنے کے ساتھ شریر کو مضبوطی بھی دیتا ہے۔ اپنے بھیتر پائے جانے والے کئی گنوں کے کارن خربوزہ انیدرا اور انگزائٹی کو دور کرنے میں سہایک ہوتا ہے۔
وہ مہیلائیں جو گربھوتی ہوتی ہیں ان کے لیے خربوزے کو اچھا بتایا گیا ہے۔ اس میں پائے جانے والا فولیٹ کا اچھا استر گربھوتی مہیلاؤں کے بھیتر نئی کوشکاؤں کے اتپادن اور ان کے رکھ رکھاؤ میں مدد کرتا ہے۔ یہ پھل شریر کے بھیتر سے اترکت سوڈیم کو باہر نکالتا ہے۔ उपचारिक विशेषताओं की दृष्टि से खरबूजा मूत्रवर्धक होता है, क्योंकि इसके भीतर मूत्रवर्धक जैसी विशेषता होती है, इसलिए ये शरीर के भीतर के विषाक्त पदार्थों को बड़ी सरलता से बाहर निकाल देता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये पेट को साफ रखता है और कब्ज जैसी समस्या से मुक्ति दिलाता है।
कहते हैं कि खरबूजा एक ऐसा फल है जिसका प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि खरबूजे के अधिक प्रयोग से मैदे के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अधिक प्रयोग से पेट में दर्द की शिकायत होने की संभावना रहती है। इसके भीतर लाभदायक शर्करा और खनिज पाए जाते हैं, जो मनुष्य की पाचन शक्ति को गति प्रदान करते हैं। खरबूजे के प्रयोग से बच्चों के भीतर भूख बढ़ती है। इस प्रकार से बच्चों की कोशिकाओं को बढ़ने और उनको अधिक काम करने में सहायता मिलती है।
इसके अतिरिक्त खरबूजे के भीतर पाई जाने वाली शर्करा तपेदिक की बीमारियों के लिए अच्छी बताई जाती है। जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है उनके लिए खरबूजा एक अच्छा फल साबित हो सकता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि खरबूजे के अंदर जो शर्करा होती है वो मधुमेह के बीमारों के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए उनको इसके प्रयोग से बचना चाहिए। इसकी शर्करा बहुत तेजी से रक्त में अवशोषित हो जाती है। खरबूजे का अधिक सेवन रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके संतुलन के बिगड़ने का खतरा पाया जाता है।
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خربوزے سے الرجی ہوتی ہے۔ اس کو کھانے کے بعد ان کے گلے میں خراش ہو سکتی ہے یا پھر چھینکیں بھی آ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو خربوزہ کھانے کے بعد ناک سے پانی آنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو خربوزے سے الرجی ہو ان کو اس کا پریوگ کرنے سے یتھا سمبھو بچنا چاہیے۔ خربوزے کو شریر کے لیے جل کا اچت سروت مانا گیا ہے، کیونکہ اس میں بہت ادھک ماترا میں جل پایا جاتا ہے۔
جب شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سمے جل کی بہت ادھک آوشکتا ہوتی ہے۔ منشیہ کے سواستھ کو بنائے رکھنے میں جل کی بھومیکا کو اندیکھا کیا نہیں جا سکتا۔ خربوزے کے پریوگ سے پانی کی کمی کو کسی سیما تک ہم پورا کر سکتے ہیں۔ جب شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو کئی پرکار کی سمسیائیں سامنے آتی ہیں، جیسے ادھک پیاس، سر درد، چکر آنا، دل کی دھڑکنوں کا بڑھ جانا اور ٹینشن آدی۔ ان کی کمی کو خربوزے سے پوری کی جا سکتی ہے۔
انوبھوی لوگوں کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں خربوزے کا پریوگ کرتے رہنا چاہیے۔ شریر میں پانی کی کمی کی پورتی کرنے کے ساتھ ہی خربوزے میں موجود وٹامنز اور منرلز
मनुष्य को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। ये मनुष्य की त्वचा को कोमल भी बनाते हैं। खरबूजे को किडनी, आंखों की बीमारी और रक्तचाप में भी लाभकारी माना जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मल त्याग करने में मनुष्य को परेशानी नहीं होती और कब्ज की मुश्किल से निजात मिल जाती है।
खरबूजे को जहां बहुत से लोग काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, वहीं पर कुछ लोग इसको शेक के रूप में प्रयोग करना पसंद करते हैं। खरबूजे की एक विशेषता यह है कि इसके भीतर रक्त को पतला करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि ये फल शरीर के भीतर रक्त के बनने वाले थक्कों की रोकथाम करता है। इस प्रकार से ये दिल के दौरे को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। खरबूजे में पाया जाने वाला विटामिन ए फेफड़ों को क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करता है। जो पोटेशियम खरबूजे के भीतर होता है, वो तनाव को भी रोकता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दुरुस्त बनाए रखता है।
इस फल के भीतर सूजन को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। ये गठिया के दर्द को कम करने में सहायता करता है। खरबूजे के बीज का पाउडर बनाकर इससे त्वचा की सुरक्षा की जा सकती है। ये त्वचा को कोमल और स्वच्छ बनाता है। खरबूजे के बीजों की एक विशेषता ये होती है कि वे खांसी, बुखार और सीने में दर्द जैसी समस्या में मदद करते हैं और साथ ही गले की खुश्की को भी, अर्थात बार बार लगने वाली प्यास को रोक देते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपने सुना साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत का राज, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारी ये सभा भी संपन्न होती है। आपके विचारों और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। तो इसी के साथ अगली मुलाकात तक हमें अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।